B73 Best Talk Show Host RJ Rubina on Thoda Personal.
Baat karo na thoda sa, saath badho na thoda sa. Khud hi khud mein jeene se kya hai fayda?
Thoda personal.
Bengaluru, ho jao thoda personal with Rubina, only on Super Hits 93.5 Red FM. बजाते रहो।
आप सुन रहे हैं सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। दिस इज थोड़ा पर्सनल। मैं हूँ रुबीना एंड दिस इज अ शो वेयर वी टॉक टू ऑर्डिनरी पीपल बिकॉज आई बिलीव दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ स्टोरी टू टेल। सम सैड, सम इंस्पायरिंग, सम हैप्पी एंड सम मेयर फैक्ट्स। लेकिन एक चीज तो इन सब में कॉमन है कि each and every story is special on its own. Did you know that 73% of Indian women do not even know what an orgasm is?
Thoda personal, thoda personal.
You tune into Super Hits 93.5 Red FM. This is Thoda Personal. Main hoon Rubina. Aur aaj we're going to talk about orgasm inequality. Bangalore, we need to talk. Do you know that nearly 70% of women in India don't orgasm every time during sex? Whatever their partners give them is what they think is pleasure. And most of the women do not even talk about it to their partners. They do not even tell them to touch them differently, or they do not even ask them to do something differently because they somewhere have this fear that what is the husband going to think about them? In India, talking about sex is not only a taboo, but for some, it is a crime. Today, we'll talk about sex. We will talk about orgasm inequality. But we're going to first start by talking about this lady who is 55 years old and her husband is 8 years younger to her. And he does not find her attractive, is not interested. And she is craving for the touch. She's craving for sex. She's craving for sexual satisfaction. But she finds herself very helpless, insecure, because her husband has an affair and he is fulfilling his pleasures.
Yeah, I'm elder than my husband by 8 years.
Okay.
5 years, I'm not aware what is a sexual life, to be very frank to you. I don't know what it is. He is having a ball of a time. If I ask him something, like for more than 5 to 6 years, he's not even touched me. If I ask him, he's saying, I have no interest in anything. I said, I'm just asking you. This is a legal marriage, right? Nothing wrong, and I'm not going to other men. I'm asking you legally. Okay, I mean, at least sometimes you can just have, I'm not asking you to give me a sexual pleasure every day. But here he wants me, ho sakta na, hak to banta hai na. But I said, just keep quiet, I say, he said. And he just slapped me, ma'am. But you know, the moment he's ignoring me, you know, mujhe inferiority complex bahut ho raha hai, ma'am. I feel like mere mein kya aisa nahi hai. Why shouldn't I have sexual pressure also in this, at this age also? Main aise hi kyun, ma'am, maru? Mine was a very late marriage, ma'am. We are brought up, you know, in such a way that you should not have anything before marriage. You should have it only after marriage.
Okay.
So this is the only man, and he's the only man whom I'm being with. So I expect only him. I don't have the thought of, you know, going with another man and doing all such things. I consider it a sin. I don't even know what is the proper sex. That's the sin. I feel so bad. So bad, he's enjoying his life. And I'm suffering so much.
Has she heard of sex toys? Has she heard of her own hand? I'm sure she can help herself. She doesn't need to go to another man. And, I mean, who said that, you know, men are required to give us pleasure? Men were created just for procreation. It's not to give us pleasure.
When we put this out on radio, we received mixed reactions. Few angry, few curious, like asking me questions like, do you actually get an orgasm after menopause? Some being sympathetic. Some really angry, saying, what is she talking about? Is this something that you need to talk about on radio? And why is she talking about sexual pleasures at this age? This is a time when she needs to take care of grandchildren. Unfortunately, this is the kind of society we still live in. We still live in a world where everyone wants a virgin for their marriage. But if a guy has had sex, it just adds to his experience and blame it to his hormones. But if it's a girl, then oh my God, what's the society going to think? And what will her husband think if he marries her? And how is he going to accept a lady who is not a virgin. Anyway, to answer all these questions and to talk about sexual dissatisfaction and to talk about orgasm inequality, with me is Dr. Lohit, one of the best sexologists of Bangalore. Thank you so much for joining us, Dr. Lohit.
I'm very fan of your voice. I usually keep listening to your voice, na? So it's kind of respect which comes directly.
I'm so glad that you listened to me. I was thinking...
Your show is really... I love to hear your show only for your voice.
Thank you. Thank you so much, Dr. Lohit. And you are one of the best sexologists in Bangalore. You know, we come from a society, we come from a culture, jahan pe going to a sexologist is a shame.
Yes, yes. Yes, Rubina, see, as you know, sex is something in basic need of life. After cook, shelter and sleep, everybody needs sex.
Absolutely.
But sex is still a taboo.
Yeah.
Sex is still a taboo in India. In spite of that, our population is 1.3 billion, 1.36 billion.
That's true.
So everybody wants sex, but nobody wants to speak about it.
That's true.
So speaking about sex is something not wrong, because we are always in a way to educate a person.
Yeah, yeah. So, and that's what we're doing on the show today.
Yes, yes. The ignorance of the sex education is leading to a lot of problems.
Yeah.
And lack of proper sex education leading to the myths and misconceptions where people are not aware of it.
That's
in the schools, what happens when any sex counselor or any sex educator is going to the schools, all the parents start restricting. So why we need a sex education when we didn't get it?
Yeah, yeah. Yeah, that's the mindset of people, right?
We are happy.
Yeah.
Yes.
I think we still are in a society, though things have changed, though there is a modern approach to life. But yet we are in a society jahan pe the moment we see something on TV, an obscene scene, we kind of either switch off so that the kids don't see it, or we kind of walk off so that our parents and elders are sitting there.
Exactly.
So that's in the name of respect. Yeah. But I somewhere feel ke in the name of respect, we kind of do not get the answers. And we believe in whatever we think and whatever we hear is right. So, Dr. Lohit, talking about our friend who is craving for sex and she does not know what to do. Her husband, on the other hand, is having a ball of a time. He is he's having an extramarital affair. He is much younger and he does not find her attractive anymore. And she is really craving for sex because she feels that going to another man is a sin. What do you think she should do?
Yes, Rubina. See, this is a very common issue with the most of the couples.
Yes.
Which tends to happen after later age of the thing, where we can see a lot of extramarital affairs where the real partner is affected.
That's right.
As you know, there was a research was done, the recent survey was done.
Okay.
Almost there is around 73% of Indian females don't know what is the real orgasm.
Oh, 73% of Indian women.
Exactly.
Wow.
Because whatever the husband does, that is the orgasm to the lady.
Yeah, yeah, yeah.
He might finish a play within 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, five minutes.
Yeah.
But they would never think about the female is satisfied or she's really happy. So what she wants. Or the females are again. It is something like a pati dev. The females are also not open enough to speak and say, I want one more time.
Yeah.
Or I want to play in a different way.
Yeah.
Or I need a more satisfaction. So they are not able to open it and say to their partners what my husband might think about me. So these kind of interpersonal relationship and lack of proper sexual communication leads to lot of barriers in the bed life.
Yeah.
First, a couple should enjoy the sensuality.
That's right. That's right.
Then they need to enjoy the sexuality.
That's right. That's
because
right.
Because every man has there in the mind, doctor, main first night kitna bar kar sakta hu, main zyada bar karna chahta hu.
That's
right. Without knowing the partner, her intention, her likes, her dislikes.
That's right. So you're saying ki basically give 1 week so that they kind of try and test each other first.
Absolutely.
That's
and
true.
Most of the Indians, they've never seen their partners naked.
Oh, they've never seen their partners naked.
Only in the dark it's going to happen.
Oh, that's so true. That's so very
and
true.
Even many
only
of
when the lights go off.
Never seen their husband pee.
So true. Sab kuch only andhere mein. We also live in a society jahan pe, you know, they're scared ke maa baap agle room mein hai. You can't even open your mouth. You can't say anything.
At least the Bangalore is something, a society you have at least different rooms. When you go to a city like Mumbai, Calcutta, so the 10 people all in a single room, a single
yeah.
curtain,
yeah.
and having an intercourse wants to yeah. go to a washroom. It's completely yeah. a disturbance.
That is. And you can't even moan. You can't even open your mouth.
Absolutely.
Because you never know what exactly. others are saying.
As you said, the female who is very much excited.
Yeah.
But his husband is not cooperative.
Yeah.
I would recommend them first to have a good sexual communication with them.
Yeah.
So which would really make her husband to understand what all he likes. Something if her husband is liking to wear some kind of dressing,
yeah.
he would have some fantasy. He would have some. He would have some fetishes.
Yeah.
So these things. First
yeah.
thing, because a woman is a woman. So whatever she has, it would have been with the other woman also.
That's true. Yeah, and I also think after a point, once you've been in a marriage for a while, so ghar ki murgi dal barabar. So when we put this up on radio, there are many people who have different reactions to the story. And some of them,
yes.
you know, one of the first questions that kind of caught my attention was, do you get an orgasm after menopause? Like, she's 55. What is she asking for? And, you know, this is the age where she should be taking Bhagwan ka naam lena chahiye, japna chahiye. Why is she even talking about sex? That's the kind of a reaction that we are getting from people.
This is a myth. This is the biggest myth we have in our Indian society,
yes.
that after 40s and 50s we need to forget about the sex.
Yeah.
But as a sexologist, if you ask me, the real sex starts after 40s and 50s.
Okay, so those who are listening
because
to us now who are over 40 have some hope.
Absolutely, because if a person is mentally, physically fit,
yeah.
even at the age of 100 years, he can have sex.
That's right.
Because sex has no expiry, and even all the 365 days, 24/7 is a sex time.
That's true. City like Bangalore, where everybody is working day in and out, there are many couples
Absolutely.
Who call me on the show and say that they don't even see their husbands or their wives till
yes.
the weekend.
Yes.
So we live
Very
in a society where
true.
It's a weekend relationship rather than the weekday relationship. And weekend is about
before
family.
Before we used to hear weekend, now it is something like a month end or
fortnight.
So even we have some cases, they say, doctor, I'm traveling abroad, please freeze my semen so and you can try with the cycles for my wife. This is the scenario where we are heading with the advanced technology.
How does this work, doctor? What when you freeze your semen at?
It's something they are giving the, no, it's a sperm, like something like you freeze my sperms and every month cycle you can try with my wife's IUI so that she gets pregnant because he's not able to have intercourse.
Oh,
in
my.
UK or US, so this is the next trending which is happening.
So it's more like a baby making machine rather than
Absolutely.
An experience
Absolutely.
And a feeling. But somewhere, kahin na kahin, though the world is changing, the society is changing, but yet we still have a big chunk of people who still do not talk about sex, who still feel ke talking about sex is a crime, not even a taboo. Like, sex is a crime. And as I started my conversation with you, going to a sexologist is like a shame. So to end this conversation, your message to people who are tuned in right now.
See, I would say the world's best de-stressing activity would be the sex. And if a person is having 20 minutes of vigorous sex, he's burning more than 200 calories. Instead, where you need to walk 45 minutes on a treadmill.
Yeah, so don't waste your time working out.
Yes,
work on something more important. Yeah.
And obviously, because every time you have sex, there is a release of endorphins, which
yeah.
we call it as an happy hormone.
Happy hormones, yes.
Yes, which
yes.
makes you to feel very light or very happy and
yeah.
very young.
Yeah.
And it improves your immunity. And if you're not able to get a good sleep,
yeah.
then just have a sex, because sex is one of the best tranquilizer.
That's very
tranquilizer
true.
Is nothing but a sleeping pill.
Yeah.
And sex is something which prevents the breast cancer in the female and the prostate cancer in the male. And there are n number of benefits with the sex.
Thank you, Dr. Lohit. Bye.
Welcome, Rubina. Thank you.
Bye. While we're having this conversation, lots of messages pouring in, some very happy, some appreciating this discussion, while some asking me, why am I talking about this on radio? However, I think it's extremely important about talking about sexual dissatisfaction, talking about orgasm inequality, talking about bedroom inequality. And as Dr. Lohit said, and as we started our conversation by saying that 70% of Indian women do not even know what an orgasm is, and most of the women don't even talk about it to their partners or their friends. friends or their family members. So this is something I'm going to ask to all the men who are tuned in. Remember, 70% of Indian women do not even know what an orgasm is, and somewhere you're responsible for it. If you'd like to be a part of this discussion, you could connect with me on my WhatsApp number. Superhits 93.5 Red FM. Bajate raho, main hoon Rubina.
Thoda personal, thoda zindagi ko badal.
Bengaluru, ho jao thoda personal with Rubina. Only on Super Hits 93.5 Red FM. Bajate raho.
It takes a couple of minutes to apply makeup to look beautiful, but it takes few seconds to scar a face.
Thoda personal, thoda personal.
But I must say, acid attack killed her outer beauty, but not her inner beauty and strength. Usne mere chehre pe acid pheka hai, mere sapnon par nahi, says the most confident 24-year-old I have ever met. Aap sun rahe Super Hits 93.5 Red FM. This is Thoda Personal. Main hoon Rubina. And, you know, at the age of 18, you want to figure your life out, right? Bade bade sapne. What am I going to study? What am I going to do in life? What's my job going to be? Where is my career going to head to? Am I going to find the right kind of a guy in my life? Shaadi hogi ya nahi? Lekin Shabnam ki zindagi sab badal gayi when she was just 18. Disfigured, taunted and shamed for no fault of hers. Shabnam, welcome to Thoda Personal.
Pehle main bolna chahti hu, very very thank you for inviting me here.
और आप कलकत्ता से हैं?
हाँ, मैं basically वेस्ट बंगाल से हूँ.
अच्छा, तो ये वहीं पे हुआ था?
हाँ, ये मेरे होम टाउन पे ही हुआ था.
ओके, और आप पढ़ रही थी उसमें?
हाँ, मैं कॉलेज की सेकेंड ईयर में थी और मेरी फाइनल ईयर की एग्जाम चल रही थी.
ओके, तो बताना चाहेंगी कि क्या हुआ था?
एक्चुअली मेरे घर के पास ही, मतलब मेरे नाइबरहुड एक लड़का था, वो हैदराबाद में इंजीनियरिंग पढ़ता था, पर उसका घर मेरे घर के पास में ही था.
Okay.
और उसका जो रिलेटिव है, मेरे रिलेटिव है, मतलब उसका गांव मेरे पास में ही था.
Okay.
तो वो मुझे फोन करता था या फिर मैसेज करता था कि मुझसे मिलो एंड ऑल. तो मैं उसको मना कर देती थी, इग्नोर करती थी मैं उसको. तो सडनली वो एक दिन मेरे घर आ गया.
Okay.
घर आके मेरे मम्मी को बोलती है कि मुझे आपकी बेटी के साथ शादी करनी है.
उसकी उम्र क्या थी?
उसकी उम्र मुझसे एक साल बड़ा होगा.
बस 19 साल में उसको शादी
करनी थी.
अच्छा,
तो मेरे मम्मी को आके डायरेक्ट बोलती है कि मुझे आपकी बेटी के साथ शादी करनी है.
तो आपने पूछा नहीं कि इतनी छोटी उम्र में शादी करनी है? क्या उसने अपने घर वालों से भी ये बात कही है या नहीं?
मैं भी उसको बोला कि अगर होना हो तो होगा, मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती. तो वो बोलता है कि नहीं, तुम पेपर में लिख के तो तुम मुझसे शादी करोगे.
अच्छा,
तो मैंने बोला ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तुम निकल जाओ मेरे घर से. तो मैंने उसको घर से निकल दिया था. तो इसी की वजह से उसने मतलब ऐसा किया.
ये जो एटीट्यूड है कि मेरी नहीं तो फिर किसी की भी नहीं, इसी एटीट्यूड की वजह से, इसी रिवेंज की वजह से अक्सर लड़कियों पर ये जुल्म होता रहा है. तो फिर
मेरे घर पे, मैं एक दिन घर पे अकेली थी. मेरे मम्मी स्कूल टीचर है और मैं जब 2 साल की थी तब मेरी फादर की डेथ हो गई.
Okay.
तो बचपन से ही मैं घर में अकेली हूँ. तो एक मम्मी स्कूल चली गई तो सडनली मेरे घर का बेल बजा. तो नॉर्मली मैं गई ओपन करने, तो लड़का खड़ा था. मैं उसको कुछ बोलूँ कुछ पूछूँ तो उसके हाथ में कंटेनर था.
अच्छा,
तो उसमें कुछ था, मुझे देखा, मुझे पता नहीं था वो क्या था तब. तो जब ऐसे उसने मुझ पर फेंक दिया तो जैसे मतलब प्लास्टिक जैसे मेल्ट होके गिरता है ना.
हाँ.
ऐसे मेरे स्किन, ऐसे हाथ का पूरा मेल्ट होके नीचे गिर रहा था.
तो ये कहाँ पे फेंका उसने? आपके हाथों पे?
हाँ,
फेंका.
हमारा डिस्टेंस इतना होगा
जी.
ऐसे फेंका पूरा, मतलब फेस पे है, साइड पे है, आई पे है.
ओके.
पूरा हाथ में. मैं देख रही हूँ मेरा स्किन जो है पूरा मेल्ट होके नीचे गिर रहा है प्लास्टिक की तरह. मेरे यहाँ पे एक दुपट्टा था वो भी पूरा एकदम मेल्ट हो गया था पूरा एकदम. तो उसके बाद मैं 4th month हॉस्पिटल में थी.
तो एक मिनट, तो ये लड़का जब एसिड फेंका आप पे, तो तब का तो भाग गया वहां से?
तब कहा, तब का तो भाग गया था क्योंकि मुझे उसके बाद कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि मेरा आंख पे भी आया था.
अच्छा, आपकी आंखें ठीक है?
अभी तो ठीक है, पर उस टाइम मेरा लेफ्ट आई में आया था पूरा बहुत ज्यादा ही. तो मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. मैं बस चिल्ला रही थी कि कोई आओ मुझे हॉस्पिटल लेके चलो. तो मेरे पास में एक अंकल था जिसने मुझे हॉस्पिटल लेके गया.
अच्छा,
इवन हॉस्पिटल में मुझे
ये चला गया वहां से?
हाँ, चला गया था तब तक. इवन हॉस्पिटल में मुझे सुबह से शाम तक ऐसे बैठा के रखा था, कोई डॉक्टर कुछ नहीं, मैं चिल्ला रही थी कि मुझे कुछ पानी दो, जल रहा है, कुछ नहीं किया। शाम को आके जस्ट ऐसे इस पे कुछ ऑयलमेंट लगा दिया, पानी या फिर कुछ भी नहीं दिया।
तो पूरा दिन
मैं ऐसे बैठी थी, क्योंकि पुलिस केस था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जब तक पुलिस नहीं आएगा तो कुछ होगा नहीं।
और आपकी मम्मा आ गई?
मेरी मम्मी तो स्कूल चली गई थी, तो ये सुन के मेरी मम्मी फिर वापस आ गई थी।
अच्छा, तो और फिर आपका ट्रीटमेंट कब स्टार्ट हुआ?
उसी दिन से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था। मेरा ये आई का कंडीशन बहुत खराब था, तो मुझे होम टाउन से कलकत्ता रेफर कर दिया गया था। मैं वहाँ पे एटलीस्ट 4 मंथ थी हॉस्पिटल में।
अच्छा,
तो वहाँ पे मेरी सर्जरी हुई, 2-3 सर्जरी में उसी हॉस्पिटल में हुई।
हाँ,
तो वहीं पे हुई थी मेरी ट्रीटमेंट।
और फिर इस लड़के का नाम लेना चाहेंगे?
हाँ, उसका नाम था आयन शेख।
और फिर उस आयन के साथ क्या हुआ?
आयन के साथ मुझे होम टाउन से
जी
कलकत्ता रेफर कर दिया गया था, और उसने उसके स्टेटमेंट में लिखा कि मुझे रेफर नहीं, डिस्चार्ज कर दिया गया है और मैं ठीक हूँ।
किसने कर दिया?
उन लड़की का जो एडवोकेट था, और उसका एग्जाम है ये बोल के उसने बेल लिया। तो उसके बाद मैंने हाई कोर्ट में केस किया अपने, हाँ, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस किया।
हाँ,
अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, नेक्स्ट कुछ दिन में मेरा केस आया है।
अभी तक में कुछ नहीं हुआ है?
5 साल में कुछ नहीं हुआ था, नेक्स्ट कुछ दिन से मेरा कोर्ट आया है, मतलब मेरा केस आया है कोर्ट में।
इस लड़के से आपकी मुलाकात हुई उसके बाद?
नहीं, उसके बाद मुलाकात नहीं हुई थी।
और ये क्या कर रहा है, एनी आईडिया?
नो, पता भी नहीं मुझे क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं पता।
5 साल और केस आगे भी नहीं बढ़ा है?
नहीं, 5 साल बाद अभी आगे बढ़ा केस।
चलिए, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप उसको अच्छी सजा मिले।
आई होप उसको जो सजा मिलनी चाहिए मेरी तरफ से, मतलब मिल गया होगा। वो उसका मोटिव यही था ना कि इसको एसिड दे दूँ, वो घर पे रहे,
Correct.
बाहर ना निकल सके,
yeah.
ये उसका लाइफ खत्म हो जाए। पर मैं भी मतलब अपने आप लेके, मुझे घर में नहीं बैठना, मेरा लाइफ किसी के हाथ में नहीं है
जी,
मुझे मतलब ऊपर वाले ने लाइफ दिया है
जी,
और मैं किसी को खत्म नहीं करने दूंगी अपने लाइफ, मुझे आगे बढ़ना है। तो मतलब वो इंसिडेंट होने के बाद मैं और फेयरलेस होगी, मतलब मुझे अंदर जीत होता है ना, वो आ गया मेरे अंदर कि मुझे करना है। उसके बाद मैंने अपना कॉलेज ज्वाइन किया, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर उसके बाद मैं एमबीए कंप्लीट किया, अभी मैं बैंगलोर में फिलहाल जॉब कर रही हूँ।
सुपर्ब,
तो यही उसकी सबसे बड़ी सजा होगी।
एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मेरा ये मानना है, मैं जितने लोगों से मैंने बात की है, आई हैव ऑलवेज फेल्ट के ऐसा जो इंसिडेंट है, इट नेवर ब्रेक्स यू डाउन बट इट मेक्स यू अ लॉट मोर स्ट्रॉन्गर। मैंने यही देखा है, एंड आई थिंक के हम में से हम ऐसे लोग हैं जिन्हें हमें कुछ छोटी सी भी खरोच आ जाए तो हम पूरा घर सर पे उठा के रखते हैं, बट समथिंग लाइक दिस हैज़ जस्ट मेड यू सो मच स्ट्रॉन्गर एंड लाइक यू आर रेडी टू फेस एनीथिंग, सो दैट्स एन अमेजिंग क्वालिटी।
मेरी मम्मी रोती थी कि क्या हो गया, ये होगा, मैं मम्मी को समझाती थी कुछ नहीं हुआ, उसने मेरे फेस पे एसिड फेंका, मेरे ड्रीम पे नहीं, मेरे सपनों पे नहीं, तो मेरा जो सपना है, जो ड्रीम है, वो मैं फुलफिल करके ही रहूँगी। आप मतलब शादी या ना हो, ये तो होता रहता है बहुत लोगों की आजकल, मतलब शादी होने के बाद भी डाइवोर्स हो रहा है,
yeah.
तो नॉर्मल लोगों की बात है, शादी yeah. तो कुछ मैटर करता ही नहीं है
जी।
और जो मेरा सपना है वो मैं फुलफिल करके ही रहूँगी, उसने मेरे चेहरे पे एसिड फेंका, मेरे सपनों पे नहीं।
अमेजिंग, उसने मेरे चेहरे पे एसिड फेंका है लेकिन सपने पे नहीं। ऑसम, आपका सपना क्या है?
मेरा सपना कुछ बनना है मुझे, मतलब कुछ कर दिखाना है, सोशल वर्क मुझे बहुत पसंद है।
तो अभी आप क्या करती हैं?
अभी तो मैं होटल इंडस्ट्री में थी, फाइनेंस डिपार्टमेंट में।
अच्छा,
हाँ।
और यहाँ पे आप किसके साथ रहती हैं?
मैं पीजी में रहती हूँ यहाँ पे।
अच्छा, तो एक बात बताइए शबनम, जिंदगी बदल गई होगी ना इस इंसिडेंट के बाद?
हाँ, थोड़ा बहुत तो बदली है जिंदगी, मतलब लोगों का जो नजरिया बदल गया है, सोसाइटी दूसरी तरह, मतलब दूसरी एंगल से देखता है, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे किस एंगल से देखता है, मुझे पता है मैं क्या हूँ और मुझे पता है क्या करना है, तो मैं कुछ माइंड नहीं करती हूँ। लोगों को जो सोचना है उनको सोचने दो, हम लोगों की सोच नहीं बदल सकते ना, तो अपने आप को मतलब अपने आप जो करना चाहते हो करो, हम किसी के सोच नहीं बदल सकते, वो अपने आप पे डिपेंड होता है
जी। बिल्कुल बिल्कुल। बट कोई ऐसा इंसिडेंट जो जिसके बाद आपको बुरा लगा, जैसे सोसाइटी ने कुछ किया हो या
नहीं? सोसाइटी ने ऐसा कुछ किया नहीं, मेरे मतलब जो घर के रिलेटिव्स है खुद के ही, वो लोग ही बहुत लाइक बार बार बोलते हैं, अब तो क्या हो गया, उसका लाइफ खत्म हो गया, शादी नहीं होगी, यही बस बोल बार बार बोलते रहते मेरे सामने, बस और कुछ नहीं।
आपको लगता है कि आपकी शादी नहीं होगी?
क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। अगर मेरे किस्मत में कोई है लिखा तो जरूर होगा, अगर नहीं हो, नहीं लिखा है तो मैं ठीक भी होती, सुंदर भी होता तो नहीं होता।
अरे आप बहुत ही सुंदर हैं बाय द वे। या तो आई डोंट थिंक, जैसे आपने कहा कि उसने आपके चेहरे पे एसिड फेंका है, आपके सपनों पे नहीं और आपकी खूबसूरती पे भी नहीं। आप बहुत ही खूबसूरत हैं एंड आई डोंट थिंक के दैट शुड बी अ रीजन फॉर यू नॉट फाइंडिंग लव।
जैसे कहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे उस पे ध्यान मत दो, वरना आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। डू व्हाट योर हार्ट सेज। और इस सोसाइटी को बस इतना कहना चाहती हूँ, जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स को अभी भी एक अलग नज़र से देखते हैं और बहुत ही हार्श हैं, उनसे बस इतना ही कहना है कि इट्स टाइम टू चेंज योर थॉट प्रोसेस। अपनी सोच बदलिए और दिमाग का एसिड निकालिए। और जब शबनम से बात हो रही थी तो शबनम ने कहा कि 4-5 साल हो चुके हैं एंड अभी कोर्ट का केस आगे बढ़ रहा है, जबकि जिसने उस पर एसिड फेंका उसको बेल मिल गया क्योंकि उसके एग्जाम्स हैं। क्या इसके एग्जाम्स नहीं थे? तो बस गवर्नमेंट को इतना ही कहना है कि हमारा जो ये सिस्टम है ना, वो बहुत ही स्लो है। इट्स टाइम टू फास्ट ट्रैक दिस प्रोसेस। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि क्या होनी चाहिए सजा?
उनको सजा मिलना चाहिए क्योंकि उसने इतना बड़ा काम किया, उसने किसी का लाइफ खराब करने की कोशिश की, तो उनको जेल होना चाहिए मेरे हिसाब से।
मेरा मन चाहे
तो मैं, उसने जो मेरे साथ किया मैं भी उसके साथ ही करूँ, मैं भी उसके ऊपर एसिड फेंकूँ
ताकि उसको पता
चले कि दर्द क्या होता है।
बिल्कुल बिल्कुल, कुछ साल जेल में बैठने से।
तो मैं गवर्नमेंट से ही बोलना चाहती हूँ, जो हमारा जो सिस्टम है वो बहुत स्लो है। जो मतलब अभी एसिड अटैक कोई केस हो रहा है तो इसका मतलब सोल्यूशन या फिर कोर्ट केस में आ रहा है 5 साल या फिर 6 साल बाद, वो मैं चाहती जो सिस्टम है हमारा वो चेंज करे और हम लोगों को फ्री ट्रीटमेंट दिया जाए, जो मिलता नहीं है। और बस बोलता कि हाँ देते बट ऐसा देता नहीं है, तो हम लोगों को फ्री ट्रीटमेंट दिया जाए और जो मतलब कोर्ट का या फिर सिस्टम वो चेंज किया जाए,
थोड़ा फास्ट प्रोसेस करे, राइट? आप क्या चाहेंगे कि वो जो बंदे ने जिसने आप पे एसिड फेंका, उसके लिए आपने जो कहा कि उसकी सजा तो उसे मिल गई है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि क्या होनी चाहिए सजा?
उनको सजा मिलना चाहिए क्योंकि उसने इतना बड़ा काम किया, उसने किसी का लाइफ खराब करने की कोशिश की, तो उनको जेल होना चाहिए मेरे हिसाब से।
मेरा मन चाहे
तो मैं, उसने जो मेरे साथ किया मैं भी उसके साथ ही करूँ, मैं भी उसके ऊपर एसिड फेंकू
ताकि उसको पता
उसको
चले,
पता चले कि दर्द क्या होता है।
बिल्कुल, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह रही हैं आप शबनम, एंड आई एम गोइंग टू एंड दिस इंटरव्यू विद दिस लाइंस दैट आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन, कि चेहरे पे एसिड फेंका है अपने सपनों पे नहीं, और आप अपने दिमाग पे जो एसिड है उसको हटाइए। अगर वो एसिड क्लियर हो जाए तो दिस वर्ल्ड इज गोइंग टू बी अ बेटर प्लेस एंड अ हैप्पियर प्लेस फॉर अ लॉट ऑफ अस, राइट? थैंक यू सो मच शबनम, आपसे मिलके, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप बहुत ही मोटिवेटिंग हैं, आप बहुत ही इंस्पायरिंग हैं, यू आर अ रियली यंग हैप्पी पर्सन, एंड आई वुड से कि आपसे मिलके मैं इतना तो ज़रूर कह सकती हूँ कि आई हैव लर्न्ड सो मच फ्रॉम यू। यू हैव मेड मी लर्न एंड अंडरस्टैंड कि जिंदगी इज़ अबाउट वॉट यू take out of it. Happiness is what you create.
Yes.
So you have definitely given that to us. I wish you all the very best for your dreams.
मैं ऐसे कई एसिड अटैक सर्वाइवर से बात कर चुकी हूँ और हमें अक्सर ये लगता है कि ये सिर्फ औरतों पर ही होता है, लेकिन ये मर्दों पर भी होता है। रिसेंटली मेरी बात हुई किसी से जिनकी पत्नी ने उन पर एसिड फेंक दिया। एक्चुअली वो घर पे सो रहे थे और उन्होंने अपने घर का जो एसिड है जिसपे टॉयलेट क्लीन करते हैं उसे उनकी आंखों पर डाल दिया और टुडे ही इज 100% ब्लाइंड। बट इन सारी कहानियों को सुनकर, इन सारे लोगों से मिलकर, मुझे हमेशा यही लगता है कि द मैन हु एक्चुअली अटैक्ड विल कवर द फेस। इन कई एसिड अटैक सर्वाइवर से बात करके, इन कई लोगों से मिलकर, मुझे एक लेडी की बात याद आती है जिन्होंने मुझसे ये कहा था कि द मैन हु अटैक्ड मीना रुबीना ही विल कवर हिज फेस, I won't. And I think, so I would end by saying ke she was underconfident, good looking girl with a beautiful face. Acid attack incident ke baad, she's a confident diva with acid scars on the face. अगर आपको भी मुझसे कुछ कहना हो तो व्हाट्सएप कीजिएगा 9880935935 पर. सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो. मैं हूँ रुबीना.
बेंगलुरु हो जाओ थोड़ा पर्सनल विद रुबीना. Only on Super Hits 93.5 Red FM. Bajate raho.
Today on Thoda Personal, we're going to talk to a few people, specially focusing on their childhood. I'm going to first start by talking about innocent children of prisoners who are lost in the system for no fault of theirs. Did you know that more children are separated from their parents due to crime than divorce? Children of prisoners are likely to suffer 3 times more mental health problems than average and 7 times more likely to commit crimes than average. Having a parent in prison can leave you feeling miserable and feeling all sorts of things. It's like, you know, you're torn between loving your parent and hating what they've done. Did you know that a child goes missing every 10 minutes in India? Chaliye calculation kar lijiye. और हिसाब लगाइए कि आखिर कितने बच्चे, कितने हजारों बच्चे गो मिसिंग एवरी ईयर, और उनमें से सिर्फ हाफ या फिर हाफ से भी कम बच्चे ढूंढ लेते हैं पुलिस वाले, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बस खो ही जाते हैं. ये एक क्राइम है, इंडिया में बहुत होता है, लेकिन हम इस क्राइम के बारे में आज बात नहीं करेंगे. हम ये नहीं बात करेंगे अबाउट व्हाट हैपेंस टू दोज चिल्ड्रेन, ये लोग जो करते हैं बच्चों के साथ ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन आज हम उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जिनके माँ बाप ने ये घिनौना सा क्राइम किया हो. क्यों किया होगा उनके माँ बाप ने ये क्राइम? यही सोच के ना कि उनके बच्चों की जिंदगी अच्छी हो जाएगी, लेकिन क्या उनकी जिंदगी वाकई में अच्छी हुई है? चलिए अब बात करते हैं मलिका से, जो सिर्फ 16 ईयर्स की है.
जी, मेरा नाम मलिका है और मैं 16 ईयर्स ओल्ड की हूँ. मेरी एक बहन थी, वो मुझे छोड़ के चली गई. जो वो बहुत याद आती है.
क्या हुआ आपकी बहन को?
वो डिप्रेशन में चली गई थी. नहीं है, अभी हम लोग अपने घर पे नहीं है.
ओके, कहाँ है फिर आप?
हम लोग एक ओल्ड एज होम में.
किसी ने आपको अडॉप्ट किया था ना?
जी.
तो फिर आप ओल्ड एज होम कैसे पहुँच गई?
तो हम लोग अडॉप्शन में थे.
ओके.
हमारे माँ बाप भी है, अभी है दुनिया में, वो किसी कारण जेल में, बिहार में.
अच्छा, तो आपको बिहार से बैंगलोर लेके आए थे कोई?
जी, मेरे भैया.
आप पढ़ाई करती हैं?
और मेरी जो बहन है ना,
हाँ,
वो पढ़ रही है, कॉलेज में जाती है.
तुम नहीं पढ़ती?
मैं नहीं पढ़ती.
क्यों?
मैं 9th तक पढ़ी थी.
क्यों, तुम क्यों नहीं पढ़ती?
क्योंकि कोई एक ही पढ़ सकते थे.
लेकिन तुम मुझे ये बताओ, जिन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया था वो कहाँ है?
वो भी बिहार में.
तो फिर उनके साथ आप क्यों नहीं हैं और आप यहाँ क्यों हैं?
कि हम लोग तो नहीं रह पा रहे थे बाजी के बगैर, बहुत रोते थे. तो वो सोचे इन दोनों बच्चों को कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा.
एक बात बताओ, आपके मम्मी पापा जेल क्यों गए?
बच्चों की किडनैपिंग के केस.
कितने साल की सजा हुई है?
20 साल के.
कितने सालों से बैंगलोर में हो?
बस 1 साल.
करना क्या चाहती हो जिंदगी में?
मैं अपने पाँव पे खड़े होना चाहती हूँ,
माँ बाप को अपने साथ रखना चाहती. सदाम, आपकी बहन कुछ करना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती है. आपको क्या कहना है इसके बारे में, और अपने माँ बाप के बारे में भी हमें कुछ बताइए.
वो लोगों को माइंड सेट है कि हम कुछ भी काम कर लेंगे. अब इन लोगों को जॉब चाहिए. मेरी बहन को एक चीज का मतलब ये है कि हमको पैसा कमाना है.
अच्छा.
मेरे को मतलब ये करना है, बहुत बड़ा बनना है. तो जॉब किस टाइप का मिलेगा आप समझ सकते हैं, और हम ये रिस्क नहीं ले सकते थे कि हम दो दो बहन को हम जॉब करने के लिए छोड़ दें.
सदाम, आपके माँ बाप को तो उम्र कैद की सजा हुई थी और 14 साल तो वो बिता चुके हैं, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? अभी तक वो जेल में क्यों है और वो बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं?
हाँ, देखिए ये पूरा सिस्टम जो है थोड़ा आप जानते हैं करप्ट टाइप का है. मेरे माँ बाप एक्चुअल में गलती किए हैं सच में, ठीक है ना?
और ये सच है, किसी ने मुझसे कहा कि आपके माँ बाप ने जिस बच्चे को किडनैप किया उसकी जान चली गई, क्या ये सच है?
नहीं नहीं, जान नहीं चली गई.
Okay.
मतलब गांव के ही बच्चे थे और उनको किडनैप किए थे मेरे माँ बाप.
Okay. और किडनैप के बाद क्या करते थे?
नहीं नहीं, वो पहली बार थी.
अच्छा.
मतलब फर्स्ट टाइम में ही मतलब
पकड़े गए
थे. हाँ, पकड़े गए. और गरीबी में कुछ भी मतलब आदमी करा है, लेकिन ऐसा अब हम लोगों को लगता है कि उनको सजा बहुत ज्यादा मिल गया।
माँ बाप जब जेल में रहते हैं तो बच्चों पर बड़ा असर पड़ता है, और आपने मुझसे ये भी कहा कि आपके माँ बाप 14 साल से जेल में है और काफी सजा उनको मिल गई है, लेकिन उन्हें तो सजा मिली ही है, लेकिन आप बच्चों का क्या है, आपको भी तो सजा मिली ही होगी ना।
कहीं एक मेरी सिस्टर जो है लगभग 20-22 साल की होकर के खो गई, 20 साल की होकर के वो कहीं चली गई, ठीक है ना, डिप्रेशन में आकर के। फिर हम लोग भी अच्छे से जिंदगी नहीं गुजार पा रहे, बिना माँ बाप के कैसे रहते हैं, आपको तो समझ में आ
गई जी। लेकिन एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए कि उनको कितने सालों की सजा हुई थी?
उनको जो है मतलब उम्र कैद हुई थी, मतलब ये 14 ईयर्स रिलीज कर देते हैं।
हाँ, तो 14 ईयर्स हो चुका है, राइट?
14 ईयर्स हो चुका है, लेकिन अभी फिलहाल में मतलब एक साल पहले सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आया है।
हाँ।
मतलब हमारे केस में नहीं, किसी और के केस में। हाँ। कि 14 ईयर्स होने के बाद जरूरी नहीं है कि हम आपको छोड़ देंगे, ठीक है ना, क्योंकि उम्र कैद है, ठीक है। तो अच्छा। इस जजमेंट के लिए बहुत सारे आदमी को परेशानी हो रहा है, लेकिन फिर भी वो 15-16 साल में निकल जा रहे हैं।
हाँ।
अभी मेरे फादर को जितना दिन हो गया जेल में, मेरे मदर को, उतना दिन से सबको उम्र कैद था और सब बहुत पहले ही निकल गए हैं। और हम लोगों को, मेरे फैमिली बैकग्राउंड भी इतने अच्छे नहीं है कि मतलब कि कोई सपोर्ट करने वाला है, या मतलब कि कोई जाके मिलने वाला तो नहीं है मेरे मदर फादर से, तो और क्या कह सकते हैं।
तो अभी तो आपको पता नहीं कि कितना वक्त लगेगा उनको बाहर निकलने के लिए?
पता तो बिल्कुल नहीं है, मतलब जो जैसे बोलते पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो बोलते हैं आपको यहाँ रहना पड़ेगा, फिर एडवोकेट के पास जाते हैं
तो आप अपने माँ बाप से मिलते हैं बीच बीच में जाके?
अभी तो अभी कितना तारीख को, 7 तारीख को मिल करके आए हैं।
उनकी तबीयत ठीक है, सब ठीक है?
हाँ ठीक है। केस मुकदमे में पैसा बहुत खर्च होता है, क्योंकि जो जेल में जो मेरे मदर फादर अगर बीमार पड़ते हैं तो वैसा ट्रीटमेंट नहीं होता जैसा उनको चाहिए होता है।
अच्छा।
बाहर से हम लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, और प्लस ये है केस में 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, एक एक हायरिंग का हम दिए हैं 10,000 रुपया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब गए, नहीं हुआ हम क्या कर सकते हैं, हम अपना पूरा जिंदगी लगा दिए। वही है, मेरे फादर तो अब दिखाई नहीं देता है अच्छे से, पहचान नहीं पाते हैं। और मदर को भी मतलब कि बहुत सारा प्रॉब्लम, उनका जेल जाने से पहले 4 ऑपरेशन हो चुका है, मतलब उनका पीत नहीं है और टिश्यू नहीं है, बॉडी पार्ट 3-4 मेरे मदर को नहीं है बहुत दिन से। हम लोग भी 2-4, 10 दिन, 2 महीना 6 महीना जो भी है माँ बाप के साथ अगर रह ले तो बहुत अच्छा होगा।
मलिका आपको कुछ कहना है?
मेरे मम्मी पापा को उसकी सजा मिल गई ना जो उन्होंने किया था, हम लोग को भी उसकी सजा मिली। हम लोग बहुत दिन अनाथ आश्रम में भी रहे थे, बाद अंकल आंटी के पास, फिर भैया के पास आए, फिर अब यहाँ है। हम लोग कितने दिन हो गए अपने मम्मी पापा के पास कभी भी नहीं रहे, सिर्फ देखे हैं दूर से।
क्या हम अपने माँ बाप के साथ कभी नहीं रह सकते? This is a question that Malika wants to ask the society. और मैं भी यही पूछना चाहती हूँ कि क्या once a criminal, always a criminal, क्या उन्हें regret करने का मौका हम कभी नहीं देंगे? क्या इन बच्चों को अपने माँ बाप से मिलने का मौका कभी मिलेगा, या फिर ये बस उनकी एक इच्छा ही रह जाएगी? मलका और उसके भाई बहन चाहते हैं कि माँ बाप तो बूढ़े हो चुके हैं और उनके बस कुछ ही जो वक्त हैं वो उनके साथ बिताना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, एंड दे वांट टू एक्सपीरियंस व्हाट अ फैमिली इज। लेकिन बैंगलोर हैड मिक्स्ड रिएक्शंस।
हाय रुबीना, दिस इज डॉक्टर अभिषेक हियर।
यस डॉक्टर अभिषेक,
बट आई हैव स्टडीड थ्रू आउट माय एमबीबीएस एंड माय एमडी इन कर्नाटका फ्रॉम मैसूर। आई हैव बीन लिसनिंग ऑल दिस पेरेंट्स एंड चाइल्ड फ्रॉम बिहार. Parents have been captured due to their unlawful activities earlier.
Yeah.
And now the child wants to stay with the parents. My suggestion would be like, why don't the government consider on the humanitarian ground? Hardly they're left with a few years of their life. And
hello.
Hi, Rubina. Good evening.
Hi. May I know whom I'm talking to?
I'm Anand.
Yes, Anand.
Listening with a lot of interest. जो आपने अभी क्वेश्चन रेज किया
जी,
should she be united with her parents or not.
Yeah.
I think the real people to answer this question are the parents whose children were kidnapped by these gentlemen, this couple. So while there is a human angle to this story, there is a criminal angle also to the story.
I agree, yeah.
And I think that the people who have really suffered at the hands of such people, they have the right to answer this question. And we would be doing an injustice to them if we do that.
शायद इसीलिए कहते हैं कि having a parent in prison can have an impact on a child's mental health, social behavior and educational prospects. ये तो हमने देख ही लिया। मलिका सिर्फ 2 साल की थी जब उसके माँ बाप जेल चले गए। उसकी बड़ी बहन डिप्रेशन में आकर कहीं चली गई। किसी को पता नहीं कि आखिर कहाँ है वो, आखिर किस हाल में होगी, क्या कर रही होगी। जस्ट इमेजिन उस पर क्या बीत रही होगी। माँ बाप जेल में, छोटे भाई बहनों को छोड़कर बस चली गई। आप और मैं तो बहुत कुछ सोच सकते हैं इसके बारे में, बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन इमेजिन उस लड़की की जिंदगी पर, उस लड़की के दिमाग पर क्या असर पड़ा होगा। मलिका सिर्फ 2 साल की थी जब उसके माँ बाप जेल गए। लास्ट 14 ईयर्स तड़प रही है, तरस रही है एक ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए, तरस रही है अपने माँ बाप के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए। शी वॉन्ट्स टू एक्सपीरियंस व्हाट अ फैमिली इज। और क्या उन्हें ये मौका वापस मिलेगा? क्या उम्र कैद की सजा 14 साल से ज्यादा है? What the parents did is a heinous crime and they've received the punishment for the same. But what about these kids who are mentally, emotionally being tortured day in and out? We might have not found a solution to this family's problem. We might have not even given her the answers she was asking us. And we definitely have to end this conversation with some questions that are still unanswered. But this is something that I've constantly been asking you. Once a criminal, always a criminal. Once a criminal, does the person have to die like a criminal? Or will they ever get a chance to regret? Will these kids ever experience the love of their parents? Will they ever live an ordinary life? With this, it's time to move on. Agar aapko mujhse kuch kehna ho, toh you can connect with me on my number. Superhits 93.5 Red FM. Bajate raho. Main hoon Rubina.
Bangalore loves RJ Rubina, and here's why.
Hi Rubina, this is Smita. I am based at Bangalore and working in one of the companies here. So my opinion on the girl Malika that we've been discussing is that I think a little bit of kindness goes a long way, and there's no harm in that. Just like Buddha, I think we should give the parents a second chance.
Hi Rubina. This is an old time listener. समय मिलता है या फिर मैं गाड़ी में होता हूँ तो सुनता हूँ. बहुत अच्छा लगता है आपके बातें सुनना, आपके विचार सुनना. और आई डोंट नो, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है कि किसी से भी आपकी बात हुई हो और वो बंदा या बंदी कनेक्ट नहीं की हो. आई थिंक यू आर अ वेरी हम्बल एंड अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सन. To continue your great work.
My name is K. Ananthasayanam. Her show is excellent, and public asking so many questions, and she very good pacify them. They'll keep them happy and movement, and they're sharing the happiness with her and what are the feelings also sharing with her. Really, she very good explanations. I'm really am so happy.
Hello. Hi, Rubina. I'm your great fan, Rubina. And thanks for supporting every listeners. I like the way you communicate to the people who are very upset or who are very sad. And you motivate us. So I'm so happy. And I love your show. And all the best, Rubina.
So, Rubina, you've been like this only. Be happy. And Haro is like a unique topic line. So, bahut aur bhi mazedar ho jayega.
Hey, Rubina. It's MJ here. And I love your show and I keep listening to you all the time.
Hi Rubina, I'm Ram Prasad. I'm a retired engineer. You give fantastic solutions to listeners' problems, young and old, and for all walks and from all walks of life. Your suggestions are frank, practical, and can be easily implemented. Looks so simple but very, very well thought of.
I've been hosting the show, which is absolutely great, and the activities and the initiative that has been taken up. And I don't know, there is a different way of appreciating it. So keep it up and helping up humanity, and a beautiful feeling from inside that comes in. So well done, guys. Give it up.
Hey, Rubina. This is Ria John. I love your show. I've heard it a time. It's a good cause that people can come and talk about their experience in this show. So good work. Keep it up. And bajate raho.
Hi, Rubina. This is Tasleem. I would like to hear your voice every day. You know, it's like refreshing me almost all the time. The entire day what we spend with lots of stress and, you know, pressure, I feel very relieved after seeing listening to your voice. And it is like very excited. I will get all the energy. I love your voice so much that, you know, I cannot sleep without hearing to your voice.
So yeah, the oneness that you maintain and the way you run your show is very good. I love it.
Baat karo na thoda sa, saath badho na thoda sa, khud hi khud mein jeene se.
Bengaluru, ho jao thoda personal with Rubina. Only on Super Hits 93.5 Red FM. Bajate raho.